आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। RBI ने ब्याज दर को 0.1% से बढ़ाकर किया 0.35। भारत में त्योहार की रोशनी पर पड़ी हिंसा की काली छाया और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा स्टेडियम बनाते हुए मजदूरों की कथित मृत्यु थी सम्मानजनक और गर्वपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल चुनाव के 3 हफ्ते पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग के अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव के बीच रिजर्व बैंक ने आधिकारिक ब्याज दर बढ़ाकर 0.35% कर दी है। RBI के गवर्नर फिलिप लॉवे ने आज दोपहर हुई बोर्ड मीटिंग के बाद 0.25% की इस बढ़त की पुष्टि की। ये नवंबर 2010 के बाद से ब्याज दर की पहली आधिकारिक बढ़त है और चुनावों के दौरान 2007 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बदलाव किए गए हैं। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की श्रृंखला में इस बढ़त को पहला माना जा रहा है। मार्च की तिमाही में महंगाई 5.1% तक पहुंच गई थी। रिजर्व बैंक की ब्याज दरें बढ़ने के बाद फेडरल विपक्ष का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अब एक बड़े कॉस्ट ऑफ लिविंग संकट में आ पहुंचा है। फेडरल विपक्ष कोष प्रवक्ता जिम चार्मर्स ने गठबंधन के आर्थिक प्रबंधन की भर्त्सना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आर्थिक व्यवस्था की कामयाबी का श्रेय तो लेने के लिए आतुर हैं, लेकिन कमियों की जिम्मेदारी से सरोकार नहीं रखना चाहते।
You know, under Scott Morrison, this is a full-blown cost of living crisis, and rising interest rates are about to be part of the pain. We've got skyrocketing costs of living, we've got falling real wages, and now at some point, today or next month, we're going to have interest rate rises as well. And so, whether interest rates are increased today or not, the Prime Minister's economic credibility is in tatters.
बदले में प्रधानमंत्री ने अपनी आर्थिक व्यवस्था का बचाव किया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने देशवासियों के लिए एक ऐसी ढाल बनाई है जिसने बाकी देशों जितना तनाव ऑस्ट्रेलिया में नहीं आने दिया।
We knew about the rising prices that were coming, particularly because of the single largest energy shock we've seen around the globe since the 1970s. And we knew that that would have an impact on Australians getting back up on their feet. And so as a result of the significant turnaround, as a result of our economic plan in this year's budget, we were able to provide that cost of living relief, to provide that shield, as we've provided that shield across this pandemic to Australians and Australian businesses that have kept them in jobs.
न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल कोस्ट में एक किराए पर रह रहे परिवार से मुलाकात करने के बाद एंथनी एल्बनीजी ने अपनी हाउसिंग पॉलिसी का बचाव किया है। स्कॉट मॉरिसन ने पहले इस शेयर्ड इक्विटी स्कीम का समर्थन किया था। साल 2008 का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां वैश्विक आर्थिक संकट के बाद श्री मॉरिसन ऐसी ही एक योजना का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, पर अब प्रधानमंत्री इस योजना की निंदा कर रहे हैं। श्री एल्बनीजी का कहना है कि इस नीति से घरों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई इस नीति से घर मालिक बन सकेंगे।
It's operated effectively in Western Australia for some 30 years. In New South Wales, Premier Perrottet is looking at just such a scheme. It's operated in Victoria. In Tasmania, they're looking at extending it. It's operated in the United Kingdom and Canada. We have high inflation and potentially increasing interest rates. Now that will put more pressure on families.
न्यू साउथ वेल्स की शिक्षा मंत्री ने राज्य की टीचर्स यूनियन से कल होने वाली हड़ताल को रद्द करने का आग्रह किया है और वादा किया है कि अगले महीने के बजट में पब्लिक सेक्टर के वेतनों की समस्या को सुलझाया जाएगा। सारा मिशेल कहती हैं कि वेज आर्बिट्रेशन को लंबित कर बातचीत को जारी रखना सरकार की साफ नीयत को दर्शाता है, पर न्यू साउथ वेल्स टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एंजेलो गैब्रिलेटोस का कहना है कि कल की हड़ताल होगी ही, क्योंकि शिक्षक 5% की बढ़त को 7.5% करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर क्लाइमेट काउंसिल के हवाले से आई एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 2030 तक 25 में से एक ऑस्ट्रेलियाई घर खराब मौसम की परिस्थिति के कारण बीमाकृत नहीं किए जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया भर में 40 इलेक्टोरेट ऐसे हैं जिन्हें हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है और इनमें से 45% क्वींसलैंड में हैं। ये रिपोर्ट क्लाइमेट वैल्यूएशन द्वारा बनाए गए क्लाइमेट रिस्क मैप के साथ आती है। इस टूल से ऑस्ट्रेलिया में लोग आग, बाढ़ और तेज हवाओं के खतरे को लोकेशन के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। क्लाइमेट काउंसिल के हेड ऑफ रिसर्च साइमन ब्रैडशॉ सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग इट हार्डर फॉर ऑस्ट्रेलियंस टू इंश्योर देयर होम्स एंड इन फैक्ट बाय 2030 1 in 25 ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टीज कुड बी इफेक्टिवली अनइंश्योरेबल। It shows us it's absolutely essential that whoever next forms government takes far stronger action to tackle the climate crisis.
The Australian Workers Union ने आज खेतों में काम करने वाले कामगारों को दिए जाने वाले कम वेतन की जांच शुरू की है। ये जांच तब आती है जब कई नियोक्ताओं का कहना है कि हॉर्टिकल्चर अवार्ड ने उनके बिजनेस मॉडल को तबाह कर दिया है। यूनियन का कहना है कि नियोक्ताओं का इस कदर प्रभावित होना दर्शाता है कि कामगारों को नियमित रूप से कम वेतन दिया जा रहा है। अब इस बात की जांच होगी कि क्या कामगारों को कोई बकाया राशि मिलनी है या नहीं। यूनियन अब एक ऑनलाइन टूल भी लाएगी जहां ये मालूम किया जा सकेगा कि मिलने वाला वेतन कम है या नहीं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बताया जा रहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मतदान कर एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है जिससे अबॉर्शन कराने का कानूनी हक वापस ले लिया गया है। 1973 के इस फैसले को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है। यूएस मीडिया आउटलेट पॉलिटिको का कहना है कि उन्होंने एक शुरुआती प्रस्ताव देखा है जिसमें बहुमत की राय प्रस्तुत की गई है। इसे जस्टिस सैमुअल एलिटो ने लिखा है और कहा है कि यह फैसला शुरू से ही गलत था। रिपोर्ट के अनुसार चार और रिपब्लिकन नियुक्ति वाले जजों ने इस मत का समर्थन किया है। इस रिपोर्ट की अब तक पुष्टि नहीं हुई है पर पॉलिटिको का कहना है कि अदालत अब भी अपना मत बदल सकती है। और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2,568 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 18.6% कम नए मामले हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,84,913 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 20 लोगों की इस घातक वायरस के चलते मृत्यु भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19,000 को पार कर गई है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कुल 189.41 करोड़ टीके की खुराकें बांटी जा चुकी हैं। दूसरी ओर भारत में त्योहार के मौके पर हिंसा प्रभावित मध्य प्रदेश के शहर खरगोन में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है और लोगों से घरों में ही रहकर ईद उल फित्र और अक्षय तृतीया का त्योहार मनाने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि खरगोन प्रशासन ने आज कर्फ्यू में ढील नहीं देने का फैसला किया है और लोगों से त्योहार घर पर ही रहकर मनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में के इस शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, साथ ही शहर के सभी धार्मिक स्थल आज बंद कर दिए गए हैं। बताते चलें कि यहां 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी जिसके बाद कर्फ्यू लागू हो गया था। प्रशासन का कहना है कि सभी समुदाय के सदस्य घर पर रहकर ही त्योहार मनाने के लिए मान गए हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.65 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का कहना है कि वे प्रवासी कामगार जो कतर में वर्ल्ड कप स्टेडियम तैयार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए उनकी मृत्यु गर्वपूर्ण और सम्मानजनक थी। यह तब आता है जब दी गार्डियन के हवाले से आई एक रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लगभग 7,000 कामगार पिछले 10 सालों में ये स्टेडियम बनाते बनाते मारे गए हैं। श्री इन्फेंटिनो ने ह्यूमन राइट्स वॉच के उस शोध के बारे में भी पूछने पर ये कहा, उस शोध में जिसमें शोषण और बेगार पर चर्चा की गई है के बारे में पूछने पर कहा कि कामगारों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उन्हें रोजगार और टूर्नामेंट के लिए एरिना बनाने में योगदान करने का मौका मिला। और अंत में एक नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बरसात की उम्मीद है, अधिकतम तापमान 12 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी बरसात बताई जा रही है, अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी में भी रिमझिम बौछार है, यहाँ अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में शाम के वक्त पानी गिर सकता है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत डार्विन की में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप के साथ बादल भी छाए रहेंगे, दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आज के समाचार में बस इतना ही, नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।